ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அர்த்தாத் பரமாத்மா ஆக்கோ சே தேக, ஆத்மா ஆக் சே தேகி நீ ஜா சக்தி ஹை, தோ ஜோ தேகி நீ ஜா சக்தி ஹை तो उसे चखा नहीं जा सकता है, सूंघा नहीं जा सकता है, तब उस आत्मा को कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए श्रुतियों ने कहा श्रुतव्यम, सुनो पहले उसके लिए. और कैसे सुनो? बोले पूर्ण एकाग्रता के साथ, ऐसी एकाग्रता के साथ समग्र, और उस एकाग्रता के साथ अपने हृदय में उस आत्म स्वरूप का मनन करो. और उसके साथ बुद्धि में क्या होना चाहिए? बोले बुद्धि के अंदर समाधान हो, श्रवण करो, मनन करो और नित्य ध्यासन को नित्य उसका अभ्यास करें. और ऐसा करने से, इस सूक्ष्म साधन से, बहिरंग साधन से नहीं, अंतरंग साधन है, इन साधनों के साथ साधन संपन्न होकर जब आत्म स्वरूप के लिए हम विचार करने के लिए बैठेंगे, तब हमें ये लगेगा कि वह आत्मा जो समस्त नाम रूप को प्रकाश करने वाली है, वह किसी भी भाव की कहीं कोई हिंसा नहीं करती. आत्मा किस, इसीलिए जो आत्मनिष्ठ पुरुष होते हैं ना, उनका आचरण भी ऐसा होता है. कि हमारे हरिद्वार में ही एक बहुत अच्छे महात्मा थे, प्रभात विश्वकुट जी महाराज, न्याय के उसके बहुत अच्छे संत थे. उनके पास कोई भी आदमी किसी तरह का कोई प्रश्न लेकर के जाएगा, संतों का जो विचार आचरण होता है इस विषय में, तो देखने को मिलता था कि महाराज के पास कोई किसी प्रकार का प्रश्न लेकर के जाए, पूछे, तो वो उसका उत्तर तो दे देते थे, परंतु कभी किसी को ये नहीं कहते थे कि तुम्हें ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसी कोई आज्ञा नहीं करते थे, आदेश नहीं करते थे. जो जैसा है उसको वैसा बता दिया, उसको वैसा समझा दिया, अर्थात वह किसी की हिंसा नहीं करते. माने किसी भी नाम, जो जैसी सृष्टि चल रही है, ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद ये सब कुछ बदल, वो सब कुछ बदल देगा, नहीं नहीं, वो जो जैसा सहज रूप से जो जैसा चल रहा है, कुछ बदलता नहीं है, कुछ बदल नहीं देता. तत्वज्ञानी के लिए कहा गया, यदि वो चाहे तो उसके संकल्प में इतनी ताकत है, वो सकल सृष्टि को परिवर्तन कर दे. तत्ववेता के अंदर इतनी आत्मशक्ति प्राप्त होती है कि वो चाहे सृष्टि को परिवर्तन करना, सकल सृष्टि को परिवर्तन कर सकता है. इतना बड़ा सामर्थ्य उसके पास होता है, परंतु वो कुछ भी बदलता नहीं है, किसी को कुछ कहता नहीं है. नैनम हिंसा, वो हिंसा नहीं करता है. जो जैसा चल रहा है, जिसको जैसे उसमें चलना है, वो प्रकृति के कार्य को सहयोग करता है, वो प्रकृति के इस कार्य का, सृष्टि के इस कार्य में कहीं अपना व्यवधान उपस्थित नहीं करता. आत्मवेता पुरुष अर्थात आत्मा को जानने वाला आत्म, इसीलिए कहा वह किसी भी भाव में सबको प्रकाश करता है, सबको देखता है, सबका प्रकाशक है, परंतु कहीं कोई व्यवधान नहीं है. इसलिए आत्मज्ञानी होने से कुछ हमारा ऐसा कर लेंगे कि बस हम तो आत्मज्ञानी हो गया, तो जल में चलने लग गया, आकाश में उड़ने लग गया, ऐसा कोई चमत्कार कर देगा या ऐसा कोई चमत्कारिक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है नारायण. ये तो केवल एकमात्र बोधगम्य है, बोध है, विचार है, जिसमें चिंतन में डो करके, खो करके, आत्मसात होकर आत्मवत भरी हुई दृष्टि है, और वहाँ कुछ सहजता है, ऐसा कुछ करना नहीं है, ये आत्मवेता तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण होता है। इस प्रकार मैं बता रही थी कि वो महात्मा कभी किसी को नहीं कहते थे, मैंने तुम्हें बस ऐसा अर्थ कर दिया, बता दिया, तुम यही मानो, उसका बता देंगे, उसके फिर उसके बाद करना न करना उसकी इच्छा, चलना न चलना उसकी इच्छा, उससे पूछो तो वो रास्ता बता देंगे, पर आग्रह नहीं करेंगे कि तुम इसी रास्ते, मेरे बताए हुए इसी रास्ते पर चलो। ये संत का, उस आत्मवेता पुरुष का लक्षण था। तो ये उपनिषद ईशावास्य के चौथे मंत्र से हमें आत्म स्वरूप का, आत्मा का स्वरूप कैसा है, इसका दर्शन होता है। परंतु इससे पूर्व जो तीन मंत्र आपको बताए, जिनमें से एक आत्मवेता पुरुष का और दूसरा जो मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का, और दूसरा मंत्र प्रवृत्ति मार्ग का, और तीसरा मंत्र जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग में, किसी एक मार्ग में भी जो ठीक से नहीं चलते हैं, जिन्हें न प्रवृत्ति का पता है न निवृत्ति का पता है, जिन्हें केवल ये पता है कि उन्हें शरीर दिखता है और शरीर के भोग दिखते हैं, दिन रात ऐशाओं में पड़े हुए, भोगों में पड़े हुए, भोग वासनाओं में लिप्त हुए हुए, जिन्होंने शरीर को ही और शरीर के भोगों को ही, इंद्रियों को ही सब कुछ मान करके चले हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुषों के लिए आत्मघाती शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहने का अर्थ ये था, इनमें से हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ हैं, आत्मा हम कौन सी, पहले अपनी निष्ठा को, कहीं हम आत्मघाती के मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं। यद्यपि इस समय जो आप सब लोग सत्संगी हैं, विचार करते हैं, रोज प्रेमपुरी आते हैं, महात्माओं का प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, आपसे मैं ऐसी आशा नहीं करती हूँ, आप विचारवान पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, वे विचार करने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए ये बात तो नहीं है। तो तब आपको ये आत्म स्वरूप के साथ चौथे मंत्र का अर्थ समझना चाहिए, और क्यों सर, ये आत्मा की इस महिमा को, इस गरिमा को जान करके, क्योंकि महात्म्य बोध, जब तक उस आत्मा के विषय में उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक उसके प्रति, उस आत्म स्वरूप के प्रति हमारी निष्ठा नहीं जागेगी। इसलिए महात्म्य बोध भी होना चाहिए, बिना महात्म्य बोध के, आत्मा के इस महिमा को समझे बिना हम कहें कि आत्मा से हम प्रेम के, आत्मा से इतनी प्रियता क्यों, क्योंकि उसका स्वरूप, उसकी महिमा ये है, वो अपरिणामी है, वो एक है, जीव गतिवानों से भी, गतिवान न होते हुए भी गतिमानों से आगे उपस्थित है, जहाँ मन से भी पहले जो उपलब्ध है, प्राप्त है, वो आत्मा है। मन जिसमें जाता है वहाँ पहले वो आत्मा विद्यमान रहती है, और वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो जो इंद्रिय विषय नहीं है तो उसे कैसे जाना जाए, उस आत्मा को कैसे जाना जाए, केवल सुन करके, श्रुति सुन करके, और उसके ऊपर हम मनन करें, बार बार विचार करें, बार बार उसे दोहराएं, उस आत्मा के स्वरूप, और उस पर निधि ध्यासन करें, नित्य अभ्यास करें, निरंतर ध्यान में लाकर, धारणा में लाकर उसके प्रति हमारा विचार चलता रहे, ध्यान उस, इसीलिए कहा एक गुना सुनो, सौ गुना मनन करो उसके ऊपर, दस गुना उस पर मनन करो, सौ गुना नीति ध्यासन करो। केवल सुनने से बात नहीं बनी, आत्मा ऐसी है ऐसा हमने सुन लिया, परंतु इतने से बात नहीं, उसके प्रति हमें विचार भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए, नीति ध्यासन भी करना चाहिए, ये श्रुति कहती है। और उसके साथ इस प्रकार, जिसको एक बात इस पर मुझे स्मरण हो रही है चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हमारी आंखों को ये ताकत नहीं है कि ये आंखें रूप का दर्शन कर सके। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बात उन्होंने लिखी कि आंखों को ये ताकत नहीं है कि हम इन आंखों से भगवान को देख सके, तब जीव को ये ताकत कहां से कि हम उसका नाम ले सके। ये ताकत जीव को कहां से है? उन्होंने तो ये कहा कि जब जिभ्या पर भगवान का नाम प्रकट होता है, आता है, जीव जब नाम जपन करने रटन करने लगती है तो समझना कि जीव के ऊपर, जिभ्या के ऊपर नाम का रूपी भगवान का अवतरण हुआ। स्वयं भगवान ही नाम बनकर उसके जिभ्या के ऊपर प्रकट होते हैं, तब जीव नाम ले पाती, जिह्वा नाम ले पाती है, जिह्वा जो तभी नामस्मरण कर सकती है। तो उसी तरह से जिस समय हम आत्म स्वरूप के विचार के लिए बैठते हैं, आत्मा के विषय में सुनते हैं, वह आत्म स्वरूप का साक्षात दर्शन ही है कि आत्मा के लिए, आत्मा की कृपा से नैनम आत्मा लभ्यते बलिन, कहा कि वह आत्मा, कोई कहे कि मैं प्रवचन सुन के, आप कठोर उपनिषद सुनते हैं ना, कि कोई सोचे कि मैं प्रवचन से प्राप्त कर लूं, बोल ना आत्मा लभ्यते प्रवचन, प्रवचन से भी नहीं मिलता। और कोई आदमी ये सोचे कि मैं बल से प्राप्त कर लूं, शक्ति से प्राप्त कर लूं, तो आत्मा शक्ति से भी प्राप्त होने वाली नहीं है। बोले आत्मनेव आत्मा की ही कृपा से आत्मा की प्राप्ति होती है। जब तक स्वयं आत्मा कृपा न करे तब तक वो आत्मा निरावरण होती नहीं है। तो इसलिए आत्मा की ही कृपा है, जिस समय आप आत्म स्वरूप को, अपने मैं को विचारने के लिए उस विचार काल में बैठते हैं। और कैसे बैठते हैं? समग्र इंद्रियों के व्यवहार को छोड़ करके, समग्र इंद्री और इंद्रियों के विषय व्यवहार को सब हटा करके, उनसे पृथक करके जिस काल में आप बैठते हैं, उस काल में समझिए कि आपके ऊपर साक्षात आत्मा की ही कृपा हो, स्वात्म कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा से ही आत्मा आपको आपके भीतर निरावरण स्वरूप का स्पष्टीकरण, आपके अंदर इसी शरीर में इस वो निरावरण रूप में आपको अनुभव स्वरूप, अनुभव की उस स्थिति में आप पहुंच पाएंगे। और उसके उस अनुभव से पूर्ण जो आपकी सृष्टि जैसा कहती है, देखो दो चीजें हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रियता माने उपनिषद सुनी, सुन करके और जैसा सुना वैसे आपके भीतर निष्ठा बनी वो, और उस निष्ठा में, निष्ठा बहुत बड़ी चीज है नारा, जब तक, इसीलिए कहा है ब्रह्मनिष्ठ, उसके साथ हमारी निष्ठा नहीं जुड़ेगी। निष्ठा वो होती है जो कभी बदलती नहीं है। निष्ठा, श्रद्धा निष्ठा में परिणित हो जाती है, बदल जाती है, पर निष्ठा वो है जो कभी बदलती नहीं है। श्रद्धा तो होती, उत्पन्न होती है, बनती है। बोले श्रद्धा बनती किससे? सुनने से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, कहते हैं श्रद्धा बनी। बोले किससे? श्रद्धा बनी सुनने से, और सुनने के साथ श्रद्धा धीरे धीरे जैसे सुनते गए वैसे आपके अंदर दृढ़ता आती गई, दृढ़ता आती गई, निष्ठा, निष्ठा ऐसी है, दृढ़ है कि जो बदलती नहीं है। कैसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए? मन निष्ठा माने जिसमें एक निश्चय है। जब तक आत्मा, इसीलिए कहा आत्मा निश्चय स्वरूप है, आपके निश्चय का अंतिम जो स्वरूप है वो निश्चय किसने कराया? बोले श्रुतियों ने कराया, उपनिषदों ने कराया। उस उनके द्वारा निश्चय कराए जाने को, उस निश्चय को आपने अपने भीतर ऐसा दृढ़ कर लिया है कि वो फिर उसमें अविचलित, किसी प्रकार का विचलितता नहीं है, परिवर्तन नहीं है, उसमें कंपायमानता नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय आपके अंदर, ऐसी दृढ़ निश्चयता, जैसे मैं कई बार आपको कहती हूँ कि आप निश्चय करना तो पक्का जानते हैं, निश्चय में, दृढ़ता में आपकी कोई कमी नहीं है। दृढ़ता में कमी ऐसे नहीं है कि जैसे उदाहरण के लिए आपके, आपको भूख लगी है, आपके सामने भोजन परोस के रख दिया गया है और आप भोजन से एक निवाया उठाकर मुंह में लाए थे कि इतने में आपको एक ने कह दिया, किसी ने, कान छोटे से बच्चा ही भले हो, उसी ने कह दिया हो कि शायद इस भोजन में, इस भोजन में जहर मिला हुआ है। भोजन कितना सुंदर है, कितनी सुंदर थाली में सज करके आया है, कितना भी सुंदर क्यों न हो और कितनी भी भूख क्यों न हो, तो आपको उस भोजन को त्यागने में कोई मलाल होगा? मन में कोई कहीं रंज भर भी विचार होगा? एक बात। और दूसरी बात, भूख भी लगी है बड़ी जोर की, भूख भी है, खाने की इच्छा भी है, परंतु फिर भी दोनों बात होने पर भी आपको उस भोजन को त्यागने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो ये बात ऐसी क्यों हुई? क्योंकि आपने उस समय ये नहीं कहा कि मैं थोड़ा सा भोजन चख लूं, फिर उसके बाद छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, मैं ऐसा सोचूंगा। ऐसा आप क्यों नहीं कहते, पहले मैं थोड़ा सा चख लूं? बोले नहीं, आप ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे, नहीं लाने का अपने अंदर करेंगे, चखने की वाली बात नहीं होगी। बोले क्यों? क्योंकि आपका निश्चय विष के प्रति दृढ़ हो चुका है। अच्छा, कोई ये कहे कि विष के लिए जो आपका निश्चय दृढ़ हुआ है वो चख करके हुआ है या सुन करके हुआ है? कोई, किसी ने आज तक ऐसा साहस किया कि पहले विष को अपनी जिह्वा में रखकर उसका चख करके स्वाद ले और फिर उसके बाद ये शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसा किसी का रहा? ऐसा किसी का नहीं था। विष के लिए जो हमने सुन लिया वो हमारी श्रुति इतनी पक्की हो गई, इतनी निश्चित हो गई कि उसमें कहीं कोई शंका नहीं रह गई, दृढ़ता हो गई। जैसा पक्का निश्चय आपने उस जहर के लिए कर लिया है, ये जहर है, ये विष है, उसके प्रति आपने जो दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसी प्रकार श्रुति के निर्णय को आप निश्चय करके अपने भीतर जानोगे और निश्चय करके स्थिर करोगे तो तब आपको उसका अनुभव, उस अनुभव सुख को, उसे उसकी अप्रोक्षानुभूति, ये जो विषय है ना, ये जो चिंतन है नारायण, ये अप्रोक्षानुभूति का है। अप्रोक्षा अनुभूति जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष नहीं, परोक्ष से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ही अप्रोक्षानुभूति के रूप में आपको जब तक इसकी, इसीलिए कहा ये अनुभूति स्वरूप है, आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति है, उसे कोई कहे किसी इंद्रिय के द्वारा कराया जाए, बोले नहीं, इंद्रिय से नहीं, ये तो स्वयं से, पर ये अनुभूति कराने में कौन सब किस चीज की आवश्यकता है? बोले दृढ़ता की आवश्यकता है। जब तक ऐसी दृढ़ता, श्रुति वाक्यों से आपके अंदर परिपक्वता आनी चाहिए, दृढ़ता आनी चाहिए और उसके स्वरूप को बार बार सुन करके उनके साथ आपका निश्चय जब एक हो जाएगा, निष्ठा जुड़ जाएगी, तो निश्चित रूप से आप स्वस्वरूप उस आत्म स्वरूप को पहचान करके जो हमारे सामने दूसरा मार्ग है, जो तीसरे मंत्र में कहा गया है, असूर्या नामते लोका तमसे नेन तमसा व्रत, जहाँ आसुरी माने जहाँ अंधकार है, अज्ञान है, इंद्रिय भोग है, उन भोगों में पड़े हुए जो बार बार जन्म मरने का चक्कर है, उससे उपरांता होगी, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। इसीलिए संत इस बात के लिए बार बार कहते हैं, उपनिषदें बार बार कहती हैं, बड़े मुश्किल से ये अवसर हमें मिला है, अब ये अवसर चूको नहीं, अब ये अवसर चूको नहीं। देवताओं को भी यहाँ जो इंद्रिय है उनके लिए देवता शब्द प्रयोग किया गया है, वैसे आप विचार करें, पौराणिक आधार पर विचार करें, तो देवता जो हमसे ऊपर है, अर्थात वो देवताओं को हम यदि विचार करते हैं, तो नारायण भोग तो उनके पास बहुत अधिक है, परंतु उनको भी ये अधिकार नहीं है। वो भी चाहें कि मैं आत्मा के विषय में निर्णय कर सकूं, आत्मा के विषय में सुन सकूं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो देवता लोग भी उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो आत्मज्ञान ईशावास्य उपनिषद से अभी आपको मिल रहा है। इन उपनिषदों के द्वारा, चाहे वो कंठ हो, चाहे वो केन हो, चाहे एन हो, चाहे ऐत्री हो, तैत्री हो, कोई भी उपनिषद हो, उपनिषदों से, ब्रह्म सूत्र से, गीता से जो आत्म स्वरूप निकल करके आता है, उस निकले हुए निखरे हुए आत्म स्वरूप को समझ सकते हैं, तो सिर्फ ये समझने की योग्यता भगवान ने आपको दी है, आपको दी है। आप अपने प्राप्त सामर्थ्य का प्रयोग करें। बात केवल ये है, हमें भगवान ने बड़ा समर्थशाली बनाकर पैदा किया है, हम असमर्थ विचारे नहीं है, हम समर्थशाली हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, परंतु उस सामर्थ्य का, उस पात्रता का हमने प्रयोग किया है, उस सामर्थ्य को सारे का सारा खर्च कर दिया हमने किसको, सांसारिक ऐशाओं में, वासनाओं में, तृष्णाओं में अपने आप को रखकर उसी के अधीन कर लिए हैं। तो इसलिए अपने से ऐशा आदि वासना ऐशा सब हटा करके, सब का त्याग करके आओ, बैठो, निश्चय करो अपने स्वरूप का। ये अवसर बार बार नहीं, और आप कहेंगे हम तो बहुत समय से सुन रहे हैं, बहुत बहुनानी जन्मानी बहुत समय से सुन रहे हैं, तो ये भी याद रखो कि आपके बहुत जन्म हो चुके हैं, और बहुत जन्मों का जो संस्कार आपको इकट्ठा हो रखा है ना, बहुत जन्मों की जो वासना पड़ी हुई है ना, ये कपड़ा इतना मैला हो रखा है कि ये इतनी जल्दी धुल करके साफ होने वाला नहीं है, इसमें साबुन रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, और अर्थात सत्संग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक न एक दिन जरूर जरूर जरूर, यदि आप प्रयत्नशील हैं, यदि आप क्रियावान हैं, यदि आपका ये पुरुषार्थ अविराम चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से आपका ये पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं होगा, सफल होगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आत्म स्वरूप आपकी बुद्धि में निरावरण रूप से, आवरण रूप से नहीं, स्पष्ट साफ साफ जब आपकी बुद्धि में उसकी स्थिरता हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा, तो अनुभूत में भी आ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के वक्तव्य को विराम देती हूँ, शेष चर्चा कल करें।